पृष्ठ संख्या 75। इतिहासकारों का यह मत है कि 1884 तक जापान चीन से युद्ध की योजना बना चुका था, परंतु इसे लागू करने में 10 वर्ष का समय लग गया। विदेशी ऋण न मिलने के कारण आम जनता पर नए नए कर लगाकर पैसा एकत्र किया गया। इन 10 वर्षों के दौरान जापान अपनी आंतरिक समस्याओं में भी उलझा हुआ था। जापान में लोग बाह्य युद्धों का विरोध कर रहे थे। वह कोरिया तथा अन्य पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाकर उद्योगों तथा व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। शांतिपूर्वक विस्तारवाद ने जापान के लोगों को बहुत प्रभावित किया। 1890 के पश्चात जापान बाह्य युद्ध का सामना करने की स्थिति में आ गया। विरोधी राजनीतिक दल सरकार की असफल विदेशी नीति का बार बार खंडन करते थे। अनेक सत्तारूढ़ राजनीतिक नेताओं का यह मत बना रहा कि बाह्य नीति में कुछ सफलता प्रदान करके ही सरकार अपनी सत्ता को मचा सकती है। उधर पश्चिमी शक्तियां भी जापान के साथ संधियों में सुधार करने को तैयार थी, और इसके लिए अप्रैल 1894 में लंदन में बातचीत शुरू हुई। लेकिन इससे भी जापान में लोग असंतुष्ट हुए। शांतिपूर्वक विस्तारवाद का प्रभाव भी कम होता जा रहा था। 1880 के बाद से पूर्वी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का शीघ्रता से विस्तार हो रहा था। फ्रांस ने हिंद चीन में तथा ब्रिटेन ने बर्मा में स्वयं को स्थापित कर लिया था। रूस ने 1891 में ट्रांस साइबेरियन रेल बनाने आरंभ कर दी थी। इन सबसे पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव पूर्वी एशिया में बढ़ा और जनता इसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने लगी। जापान में अब कोरिया को लेकर चीन से युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी। विदेश मंत्री मुतुशु ने चालाकी से सेना का ध्यान कोरिया की ओर लगाने का प्रयास किया, ताकि सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर सके। उनका यह भी कहना था कि इससे जापान में जनसाधारण एकजुट हो जाएंगे, राजनीतिक कलह का अंत हो जाएगा, जापान को यश प्राप्त होगा तथा उस जैसे उन व्यक्तियों की अपनी इज्जत बढ़ जाएगी जो गैनरों पर काबू पाना चाहते थे। थोड़ा बाद की बजाय 1894 में युद्ध कुछ हद तक कोरिया की घटनाओं तथा उनके कारण चीन की प्रतिक्रिया की वजह से हुआ। 1894 में जापान समर्थक कोरियाई नेता किम ओक क्यून की हत्या हो गई। इस घटना ने पहले से ही बने विस्फोटक स्थिति के लिए चिंगारी का काम किया। जापान में तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई और गैनयोशा जैसी गुप्त समितियां सरकार को युद्ध के लिए बाध्य करने लगी। जापान को अब वास्तव में युद्ध शुरू करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। अब उसने कोरिया में तुंधक विद्रोह भड़काया। तुंधक पूर्वी ज्ञान पर जोर देते थे, जिसमें बौद्ध धर्म, ताओवाद तथा कन्फ्यूशियसवाद का सार था। तुंधक संप्रदाय कैथोलिक धर्म से मिलते जुलते एक देव को भी पूजता था। कोरियाई सरकार ने तुंधकों को अवैध घोषित कर दिया, ताकि वह जनता को बहका न सके। परिणाम स्वरूप तुंधकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह पर काबू पाने के लिए कोरियाई सरकार ने चीन से सहायता मांगी। छिंग सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सेनाएं भेजने के पश्चात जापान को सूचना दी, न कि भेजने से पहले, जैसा कि थियेनचिन में समझौता हुआ था। जापान ने अपनी सेनाएं तत्काल कोरिया भेजी। विद्रोह समाप्त करने के पश्चात चीन ने तब तक सेनाएं हटाने से इनकार किया जब तक जापान अपनी सेनाएं नहीं हटा ले। पश्चिमी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी असफल रहा। अब ली ने युआन सरखाए की सलाह पर 3 चीनी युद्धपोत कोरिया भेजे। ब्रिटिश जहाजों पर भी चीनी सैनिक कोरिया के लिए रवाना किए गए। अब जापान कैसे चुप बैठ सकता था? वह तो मौके की तलाश में था। उसने भी सैनिक कार्यवाही आरंभ कर दी। जापानी नौसेना ने चीन का एक जहाज कोरिया की खाड़ी में डुबो दिया, जिसमें 950 चीनी सैनिक मारे गए। अब 1 अगस्त 1894 को खुलेआम युद्ध शुरू हुआ। कमांडर ली की हुआए सेना पियोंगयांग में 16 दिसंबर को परास्त हुई। समुद्र में चीन की जबरदस्त पराजय हुई। हालांकि चीन की नौसेना में 65 जहाज थे, जबकि जापान के पास केवल 32। किंतु चीन अपनी पूरी नौसेना का सही उपयोग न कर पाया। केवल ली की पेयांग टुकड़ी तथा दो अन्य क्षेत्रीय टुकड़ियों ने ही जापानी नौसेना का सामना किया। शेष नानयांग टुकड़ी तथा दो अन्य क्षेत्रीय टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जापान ने अपने अति आधुनिक 21 जहाज युद्ध में लाए। पेयांग टुकड़ी के जहाजों की गति जापानी जहाजों से कहीं धीमी थी, जबकि उनके पास 25 जहाज थे। चीनी नौसेना पुरानी तथा धीमी गति की थी, जबकि जापानी नौसेना कम संख्या में होने पर भी आधुनिक व तीव्र गति की थी। 17 सितंबर 1994 को दोनों नौसेनाएं समुद्र में यालू नदी के पास मिली। एडमिरल तिंग की योजना के विपरीत कैप्टन लियू ने चीनी नौसेना के 11 जहाजों को अपने तरीके से खड़ा किया, जो कि बिल्कुल अकस्मात था। इस भगदड़ में 4 जहाज नष्ट हो गए तथा हजारों की संख्या में सैनिक घायल हो गए। जापान का केवल एक जहाज नष्ट हुआ। बचे हुए चीनी जहाजों को पोर्ट आर्थर ले जाया गया, जहां उन्हें ठीक करने के पश्चात 18 अक्टूबर को वेई हाईवे नौसैनिक अड्डे पर भेज दिया गया। नवंबर में जापान ने स्थल सेना की सहायता से पोर्ट आर्थर तथा तालियेन जीत लिए। इससे ली अपनी नौसेना का प्रयोग न कर पाया। 12 फरवरी 1895 को जापानियों ने वेई हाईवे जीत लिए। एडमिरल तिंग ने आत्महत्या कर ली, जबकि बाकी अफसर गिरफ्तार कर लिए गए। 11 चीनी जहाज जापान को प्राप्त हुए। चीन की स्थल सेना तथा नौसेना की भारी पराजय से ली को बहुत तिरस्कृत होना पड़ा। उसे पदच्युत कर दिया गया तथा उसकी अत्यंत निंदा हुई। नवंबर के आरंभ में चीन ने अमेरिका को मध्यस्थता करने के लिए कहा। चीन भारी हर्जाना देने को तैयार था तथा कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता देने को भी तैयार था। अब तक जापानी सेनाओं से मंचूरिया तथा लियाओ तुंग को भी खतरा हो गया था। चांग इन हुआन को शांति दूत के रूप में जापान भेजा गया। जापान ने जानबूझकर उससे बात करने से इनकार कर दिया। वह केवल राजकुमार कुंग अथवा ली हुंग चांग से ही बात करना चाहते थे। अब तक पेयांग नौसेना हथियार डाल चुकी थी और छिंग सरकार जल्द से जल्द शांति कायम करना चाहती थी। ली को फिर भी सम्मानों के साथ नियुक्त किया गया तथा जापान के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया। सभी जापानी नागरिकों ने युद्ध का उत्साहवर्धक समर्थन किया। इस विजय से जापान स्वयं को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर पाया। पश्चिमी देशों को भी जापान की शक्ति का अंदाजा हो गया था। इस युद्ध से जापान को कुछ भौमिक अधिकारों की उम्मीद थी। कुछ जापानी ताइवान तथा अन्य चीनी क्षेत्र युद्ध विजय के इनाम के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। कुछ जापानी दक्षिणी मंचूरिया में विशेष अधिकार पाना चाहते थे। जापान के उदारवादी लोगों का मत था कि उन्होंने अपने पड़ोसी देश कोरिया को स्वतंत्रता दिलाकर उसे चीन के चंगुल से मुक्त किया है। दुर्भाग्यवश युद्ध की समाप्ति के पश्चात जापान के लोगों में एकता भी नहीं रही तथा उनके अनेक लोगों को इससे निराशा हुई। जैसा कि अकीरा इरिए का मत है, जापानियों में शक्ति घमंड पैदा हो गया था और उनकी स्वतः न्यायप्रियता के प्रचंड ने उनकी योग्यता एवं यथार्थवादी उद्देश्यों को पीछे छोड़ दिया था। द जापानीज हैड डेवलप्ड एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर पावर एंड देयर सेल्फ राइटियस प्रिटेंशंस हैड आउट स्ट्रिपेड दियर कैपेबिलिटीज एज वेल एज रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जापान की सरकार ने एक 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार कोरिया की स्वतंत्रता, भारी हर्जाना, भूमि प्राप्ति, भविष्य में व्यापारिक तथा नौसैनिक क्षेत्र में विशेष अधिकार पाना मुख्य थे। शिमोनोसेकी में समझौता आरंभ होने से पहले ली ने जापान से अनुरोध किया कि वह समझौता करते समय एशिया के हित को सदैव ध्यान में रखे। यह भी कहा गया कि चीन व जापान को एक दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। ली को समझौते के समय कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिनों ली पर किसी ने गोली से निशाना लगाया, लेकिन वह बच गया। इस घटना से जापानी सरकार बहुत शर्मिंदा हुई। उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जापानी सरकार ने हर्जाने की रकम 30 करोड़ तायल से घटाकर 20 करोड़ तायल कर दी। इस प्रकार समझौते में देर लगने से चीन को कुछ हद तक लाभ हुआ। 17 अप्रैल 1895 को शिमोनोसेकी की संपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी।